आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दुनिया भर में पहले लैटिन अमेरिकी पोप और आधुनिक कैथोलिक चर्च में एक परिवर्तनकारी शख्सियत पोप फ्रांसिस की याद में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस साल की शुरुआत में वे डबल निमोनिया से पीड़ित थे और 88 वर्ष की उम्र में ईस्टर सोमवार यानी कि 21 अप्रैल को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सभी के लिए एक झटके के रूप में सामने आई, क्योंकि ईस्टर संडे के दिन सेंट पीटर स्क्वायर में उन्होंने भीड़ का अभिवादन किया था। उनकी मृत्यु पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देश इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में आयोजित शाम की प्रार्थना सभा में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी गई। ये दुनिया भर में आयोजित हजारों प्रार्थनाओं सभाओं में से एक थी जो उस व्यक्ति यानी पोप फ्रांसिस की याद में की गई जिन्होंने 2012 से रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया। उनके निधन की घोषणा सोमवार रात कार्डिनल केविन फेरेल ने की।
कैरिसिमी फ्रेटेली एट सोरेली,
डियरेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विद डीप सोरो आई मस्ट अनाउंस द डेथ ऑफ आवर होली फादर फ्रांसिस। At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and of his church. He taught us to live the values of the gospel with fidelity, courage, and universal love, especially in favor of the poorest and most marginalized. With immense gratitude for his example as a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis to the infinite merciful love of the one and triune God. Thank you.
Te Dio uno e trino. Grazie.
266वें पोप को गरीबों और कमजोरों तक पहुंच बनाने, पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता और शांति की अपील व मध्य पूर्व, यूक्रेन और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में संघर्ष समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए सराहा गया है। पहले लैटिन अमेरिकी पोप ने अपनी विनम्र शैली और गरीबों के प्रति सहानुभूति से दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन पूंजीवाद और जलवायु परिवर्तन पर उनकी आलोचनाओं ने कई रूढ़िवादी वर्गों को नाराज भी किया। पोप फ्रांसिस का जन्म स्थान अर्जेंटीना। यहाँ के राष्ट्रपति जेवियर मिली ने इस कैथोलिक धर्मगुरु के निधन पर एक बयान जारी किया।
The Argentine Republic, a country with a long Catholic tradition and the homeland of Pope Francis, deeply mourns the departure of His Holiness and sends its condolences to the Bergoglio family. The President of the nation accompanies in this sad moment all of those who profess the Catholic faith and who found in the Supreme Pontiff a spiritual leader.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा,
From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the church to bring joy and hope to the poorest. May it unite men with each other and with nature. May this hope continually resurrect beyond him. My wife and I extend our thoughts to all Catholics, to the grieving world.
पोप फ्रांसिस को लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी थी और युवावस्था में ही उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकालना पड़ा था। 14 फरवरी को उन्हें एक श्वसन संकट के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो बाद में डबल निमोनिया में बदल गया। वे वहां 38 दिनों तक भर्ती रहे और अपने 12 साल के सफर में ये उनकी सबसे लंबी अस्पताल यात्रा रही। पोप फ्रांसिस ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि वे सेंट पीटर्स बेसिलिका में नहीं बल्कि शहर के उस पार स्थित सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफन होना चाहते हैं। ये वही चर्च है जहां उनकी प्रिय वर्जिन मैरी की आइकन सालोस पोपुली रोमानी स्थित है। नवंबर 2024 में उन्होंने अपने अंतिम संस्कार की रस्मों में बदलाव कर उन्हें सरल बनाया, ताकि ये दिखाया जा सके कि वे स्वयं को केवल एक साधारण बिशप मानते थे और उन्होंने वैटिकन से बाहर दफन होने की अनुमति भी दी। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा,
His was a papacy of firsts, the first pope to hail from the Americas, the first Jesuit pope, and the first to take the name of that great champion of the poor, Saint Francis of Assisi. Pope Francis's compassion embraced all humanity, and today he will be mourned by Catholics and non-Catholics alike.
विपक्षी नेता पीटर डटन ने पोप फ्रांसिस की जीवन शैली और उनकी दूरदृष्टि की सराहना की.
He lived frugally and simply. Above all else, he was driven by Christ's values of mercy and forgiveness. He emphasized those values in his last Christmas address, saying, and I quote, God's mercy can do all things. It unties every knot. It tears down every wall of division. God's mercy dispels hatred and the spirit of revenge. With God, may Pope Francis rest in peace.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की.
Pope Francis was a messenger of hope, humility and humanity. He was a transcendent voice for peace, human dignity and social justice. He leaves behind a legacy of faith, service and compassion for all, especially those on the margins of life or trapped by the horrors of conflict. Pope Francis was a man of faith for all faiths, working with people of all beliefs and backgrounds to light a path forward.
17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में जन्मे होरे मारियो बर्गोलियो इटली से प्रवास करके आए माता पिता के बेटे थे. 21 वर्ष की आयु में वे निमोनिया की एक गंभीर बीमारी से बाल बाल बचे थे. युवावस्था में ही बर्गोलियो ने रसायन विज्ञान में डिप्लोमा हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने पादरी बनने की शिक्षा शुरू की. अपना 33वां जन्मदिन आने से कुछ ही दिन पहले उन्हें जेसुइट समुदाय में औपचारिक रूप से पादरी के रूप में अभिषेक मिला. वर्ष 1998 में उन्हें अपने जन्मस्थान ब्यूनस आयर्स का आर्च बिशप नियुक्त किया गया. 76 वर्ष की आयु में होरे मारियो बर्गोलियो को चर्च का 266वां प्रमुख चुना गया और उन्होंने नाम रखा पोप फ्रांसिस. वेटिकन के प्रवक्ता फादर थॉमस रोसिका ने कहा कि ये चयन बेहद सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया और उन्हें पीपल्स पोप माना गया.
The pastor came to meet his people, and it was beautiful. Then he took the microphone again, and he didn't follow the book. Thank God.
पोप फ्रांसिस अपने कई फैसलों के लिए कई बार सुर्खियों में रहे, लेकिन कई लोगों ने पोप फ्रांसिस की प्रशंसा एक प्रगतिशील पोप के रूप में भी की, जिन्होंने अपने ही चर्च के भीतर गहरे रूढ़िवादी विरोध का सामना किया. उन्होंने चर्च से आग्रह किया कि वे तलाकशुदा कैथोलिकों को अपनाएं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अलग थलग किया गया था. और यही नहीं, उन्होंने कभी कभी तीखे शब्दों में धन की असमानताओं पर भी खुलकर बात की. पोप फ्रांसिस की सबसे बड़ी भावनात्मक प्रतिबद्धताओं में से एक पर्यावरण भी था. उन्होंने पर्यावरण के मानव जनित विनाश को ईश्वर के खिलाफ पाप करार दिया और बार बार चेताया कि प्रकृति की उपेक्षा मानवता की उपेक्षा है.
I appeal to all the world's leaders to act courageously with justice and always tell the truth to people, so that people may know how to protect themselves from the destruction of the planet and how to protect the planet from the destruction that very often we trigger.
2023 में पोप फ्रांसिस 200 वर्षों में अपने पूर्ववर्ती के अंतिम संस्कार में अध्यक्षता करने वाले पहले पोप बने. हालांकि वे शारीरिक रूप से कमजोर थे और उन्हें व्हीलचेयर पर ही अंतिम संस्कार में शामिल किया गया. पोप फ्रांसिस के अंतिम वर्षों में उनके सार्वजनिक संबोधन काफी कम हो गए, लेकिन जब भी उन्होंने बात की वे अक्सर युद्ध से भरे इस दुनिया में शांति की अपील करते थे. फिर भी उन्होंने जनता के साथ सेल्फी लेना जारी रखा, आम लोगों से व्यक्तिगत रूप से पत्रों और फोन कॉल्स का जवाब दिया और यहां तक कि एक जेल का दौरा कर कैदियों के पैर तक धोए. उन्होंने कहा था कि बिशप्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग नहीं होते, बल्कि उन्हें सबसे बड़े सेवक बनना चाहिए. चर्च के इतिहासकार पॉल कॉलिंस का कहना है कि पोप फ्रांसिस एक ऐसे पोप थे जो चर्च के संचालन के तरीके को चुनौती देने से डरते नहीं थे. उनका कहना है कि पोप फ्रांसिस के प्रयासों का उद्देश्य दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक को और अधिक समावेशी बनाना था.
I'd say he's probably the most important pope since the Reformation. His legacy is a legacy of recovering extremely important elements within the Christian and Catholic tradition, those pastoral care elements, those elements of openness to people who are marginalized, He sees the church, he says, as a hospital. It's a place where the sick go to be cured, where the people go to be supported, where people go to be cared for.
ये रिपोर्ट पेगी जियाकोमेलोस, क्लॉडिया फरहाट, सिडनी लैंग और एनन ली द्वारा एसपीएस हिंदी द्वारा पेश की गई है।
एसपीएस रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने? इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।